श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतिता पावन हेतु तव अवतार, मोसमा पतिता प्रभु न पाए बेहार। पीत पावन हेतु तव अवतार, मोसमा पतिता प्रभु हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे कृपावलोकन करो, आमी बड़ दुखी। आह प्रभु नित्यानंद सुखी उपावलोकन करो, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। या करो सीतापति साई, तब कृपा बले पाए हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग सृजीव प्रभु लोकनाथ। हा स्वरूप नातन भट्टयुगा सृजीवा लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। चैतन्य प्रभु
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jai Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radhe. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranita. Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva.
Sai Gaura Premanandi Hari Hari Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtodhara Shat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtodhara Shat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा मैया जमुना मैया की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 18।
तेनेक आत्मानम अशेष देहिना कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्व अत्मद्धा। तैनेक आत्मानम् अशेष देहिना कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा। तेनैक आत्मानमशेषदेहिना कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा। तेनेक आत्मानमशेषदेहिना कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा। तेनेक आत्मानमशेषदेहिना कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा। तेनेक आत्मानमशेषदेहिना कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा। शब्दार्थ तेन अतः एकम् एक आत्मानम् परमात्मा को अशेष अनंत देहिनाम जीवों को कालम काल समय प्रधानम भौतिक कारण पुरुषम परम पुरुष पर ईशम दिव्य नियंता स्वतेजसा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ध्वस्त विलग गुण प्रवाहम भौतिक प्रवाह से आत्मा एक भावेन एक के रूप में स्वीकार करने से भजध्वम भक्ति में लगो अद्धा प्रत्यक्ष। भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भाषांतर चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा है और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण है। चूंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग है अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त है और प्रकृति के स्वामी है। अतः तुम्हें उनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य
वैदिक परिगणनाओं के अनुसार सृष्टि के तीन कारण हैं, काल, अवयव तथा सृष्टिकर्ता। ये तीनों मिलकर त्रितयात्मक अर्थात तीन कारण कहलाते हैं। इन्हीं तीन कारणों से इस संसार की सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है। ये समस्त कारण भगवान में पाए जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, सर्व कारण कारणम। इसलिए नारद मुनि प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण भगवान की पूजा करने का आदेश उपदेश देते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वृक्ष की जड़ सिंचने से वृक्ष के सारे अंग अनुप्राणित हो उठते हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार मनुष्य को सीधे भक्ति में लगना चाहिए, इसी में सारा पुण्य कर्म आ जाता है। चैतन्य चरितामृत का कथन है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब कोई भक्ति में परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करता है तो वह स्वतः अन्य सारे पुण्य कर्म करता है। इस श्लोक में स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे सब भगवान की ही आध्यात्मिक शक्ति से निस्रुत होते हैं। जो लोग वास्तव में इस ज्ञान में निष्णात है, वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध भगवान से न हो। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, प्राण आचार से ही तो प्रचार। प्रचार का भावना ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी नहीं बैठा है तो चार दीवार को हम प्रचार कर सकते हैं। तो मैंने कई बार सोचा था ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, कलयुग में तो करोड़ों लोग है, दो चार पांच दस बीस तो मिल ही जाएंगे। नहीं, कोरोना वायरस आने के कारण अभी जो हॉल में 2000 लोग बैठ सकते हैं, अभी हम लोग चार पांच लोग सामने बैठे हैं। तो प्रभुपा जी और हमारे आचार्यों ने बोला है कि श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है वो रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। तो श्रीमद् राधेश्याम प्रभु ने कहा है कि गवर्नमेंट के इतने भी नियम आए, लेकिन हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है और हमारा जो रूटीन है वो चलते रहना चाहिए। कई बार हम हमेशा हमारा अभ्यास रहता है कि हम जब तक ज्यादा भक्त सामने नहीं तो हम उत्साह से प्रचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं कि सामने हो ना हो, और स्वयं अपने उदाहरण से प्रकट कर रहे हैं कि सामने कोई है नहीं, लेकिन अपने उसी उत्साह से प्रभु जी आज हम देखते हैं कि प्रचार में लगे हुए हैं। और वो चार घंटा प्रवचन देते हैं, उसके लिए कितना घंटा तक प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी है, अभी हम चौथे स्कंध से पढ़ रहे हैं अध्याय 31, प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। तो ये बहुत ही पुरानी घटना है और यहाँ पर प्रचेताओं को नारद जी दिव्य उपदेश दे रहे हैं, भक्ति का उपदेश। और आज के श्लोक में बता रहे हैं नारद जी कि तुम्हें भगवान से गुणात्मक रूप से अभिन्न मानते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर शब्द आता है कि आत्मैक भावेन भजन्व मद्धा। तो कोई मायावादी या ब्रह्मवादी श्लोक को पढ़ेगा तो बोलेगा हमारे भगवान की है, लेकिन यहाँ पर जीव और भगवान गुणात्मक रूप से एक है। भगवान सच्चिदानंद है, शाश्वत ज्ञान में आनंद में है, और भगवान के अंश के रूप में जीव भी भगवान के समान है। लेकिन भगवान विभू सच्चिदानंद है और जीव अनु सच्चिदानंद है। तो यहां पर नारद जी उनको बोल रहे कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम दिव्य हो, तुम भगवान से गुणात्मा सच्चिदानंद रूप से अभिन्न हो, इसलिए तुम्हें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। और फिर बताते हैं कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, समस्त जीवों के परमात्मा है, वे निकटस्थ तथा दूरस्थ कारण है, और भगवान प्रकृति के स्वामी है। और हालांकि सारी चीजें भगवान से उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान उनसे अलग है। तो अलग अलग भगवान के गुणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं नारद जी और प्रजेताओं को भगवान की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अभी इस प्रसंग में विदुर और मैत्रेय का जो प्रसंग या संवाद चल रहा है उसका अंतिम भाग आ गया है, क्योंकि विदुर जी और मैत्रेय का संवाद तीसरे स्कंद से चालू होता है। तो तीसरे स्कंद में करीबन 33 अध्याय और चौथे स्कंद में 31, ऐसे 64 अध्यायों का विदुर तथा मैत्रेय संवाद है और उसका यह अंतिम अध्याय, चौथे स्कंद का अंतिम अध्याय। तो यहां पर हम देखते हैं कि नारद जी भक्ति अवतार, सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए नारद जी का निर्माण हुआ है, और नारद जी हमेशा जिसको भी मिले भक्ति का ही उपदेश करते रहते हैं। हालांकि उनका उपदेश करने का माध्यम अलग अलग हो सकता है, मुरगारी को मिलेंगे तो वो अलग तरह से बताएंगे, रत्नाकर को मिलेंगे तो अलग से बताएंगे, या अमरीश या प्रहलाद या ध्रुव या अलग अलग राजा महाराजों को अगर उपदेश करना है भक्ति का तो अलग तरह से बताएंगे। जब उन्होंने देखा कि प्रचेताओं के पिताजी है ना, उन्होंने देखा कि प्रचेताओं तो तपस्या करने के लिए घर से निकले हैं और उन्हें शंभु शिव जैसे एक महाजन गुरु के रूप में प्राप्त हो गए हैं, तो उनका तो जीवन अभी सिद्ध हो गया। अभी उन्होंने सोचा कि प्रचेताओं के पिताजी महाराज प्राचीन परिषद घर में बैठे और सकाम कर्म में लगे हैं, तो नारद जी ने उनके ऊपर कृपा देने के लिए फिर वो महाराज प्राचीन परिषद के यहाँ चले गए। और जब उन्होंने देखा कि ये डायरेक्ट भक्ति का उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने पुरंजन आख्यान मतलब जीवात्मा की कहानी अलग अलग रूपों के द्वारा कम से कम 5-6 अध्याय में महाराज प्राचीन परिषद को बताते हैं और अंत में उनको कन्विंस मतलब उनको कन्विंस कर देते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि नारद जी का उपदेश सुनकर महाराज प्राचीन भरिषत जिन्होंने अपने बच्चों को तपस्या करने के लिए भेजा था, अपने बच्चों का उन्होंने वापस घर आने का राह भी देखा नहीं। तुरंत सोचा अभी इमरजेंसी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए घर को त्याग देना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोला कि ठीक है अभी मेरे बच्चे तो तपस्या करने के लिए गए हैं, आप ही राज्य को संभालो, मैं निकला। तो नारद जी की ऐसी शक्ति है जिसको भी मिलेंगे उसके हृदय में वैराग्य निर्माण कर देते हैं। फिर महाराज प्राचीन परिषद हो या मृगारी हो या रत्नाकर हो, जो भी हो, नारद जी के संपर्क में जो भी आता है वो इस भौतिक संसार से वैराग्य प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लग जाता है। ये नारद जी की शक्ति है। और नारद जी डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष बोल रहे हैं कि प्रजाओं को कि भगवान ही इस जगत का प्रत्यक्ष कारण है और तुम्हें साक्षात भगवान की ही पूजा करनी है। ऐसा नहीं नारद जी बोलते कि नहीं ठीक है आपका आपका लगाव शिव जी की तरफ है तो शिव जी की भक्ति करो, आपका लगाव देवताओं की तरफ है देवताओं की भक्ति करो। नहीं, नारद जी का सीधा उपदेश है, बोलते हैं कि भगवान मूल है, मतलब वृक्षों की जड़ को सींचने से वृक्ष का तना, वृक्ष की टहनियां, पत्ते, फूल सबका पोषण हो जाता है, और पेट में अन्न डालने से सारे अवयव पोषित हो जाते हैं। उसी तरह भगवान इस संसार के मूल है और भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य प्रभु जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कई बार लोगों को बताने से कह रहे कृष्ण भक्ति करो सब कुछ हो जाएगा, तो लोग बोलते क्या कृष्ण भक्ति करने से मेरी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होगी क्या, कृष्ण भक्ति करने से मेरे को नौकरी मिलेगा, सुंदर पत्नी मिलेगी, ये मिलेगी, ऐसा क्या? तो समस्या क्या है पे, श्रद्धा की समस्या है, फेथ नहीं है, है ना। तो लोगों को लगता है कि नहीं मैं मेरा प्रयास करूंगा, मेरे प्रयास करने से मैं अच्छा शिक्षा प्राप्त करूंगा, अच्छा नौकरी प्राप्त करूंगा, अच्छा धन प्राप्त करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मेरे बल से। वृंदावन चंद्र की श्री जगन्नाथ बल सुभद्रा माई की प्रभुपाद, तो लोगों का इतना अज्ञान है कि मेरे बल से, ये भी नहीं समझ पाते कि बल कहां से आ रहा है। हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, मन बुद्धि में सारा बल भगवान से आ रहा है। अगर भगवान बल निकाल देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें, या कोई भौतिकवादी हो या कोई अध्यात्मवादी हो, कोई भी हो, उसे यही समझना है कि हमारे पास जो भौतिक बल है या हमारे पास जो आध्यात्मिक बल है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। जन्माद्यस्य यतः, सबके स्रोत भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। गीता में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे से आ रहा है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सब कुछ मेरे से आ रहा है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ लेता है कि सबके स्रोत भगवान है, वो भगवान के शरणागत होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ पर समस्त कारणों के कारण भगवान को कहा गया है। शुरुआत में बाबा जी लिखते हैं कि वैदिक परिगणनाओं के अनुसार सृष्टि के तीन कारण है, कालम और प्रधानम पुरुषम। प्रधानम यहाँ पर अवयव या मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, भौतिक पदार्थ कहा गया है। तो काल भौतिक पदार्थ तथा सृष्टिकर्ता, ये ही किसी भी चीज के निर्माण के तीन कारण होते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ भी निर्माण करना है तो तीन आवश्यक है। किसी बड़ी वास्तु का निर्माण करना है तो आपको तीन चीज चाहिए। वास्तु को निर्माण करने के लिए भौतिक पदार्थ चाहिए, और वो वास्तु का डिजाइन करने के लिए किसी डिजाइन अब किसी व्यक्ति की जो डिजाइनर है उसकी आवश्यकता है, और फिर समय की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास डिजाइन भी आ गया, भौतिक पदार्थ भी आ गया, तो एक सेकंड में वास्तु का निर्माण होगा, नहीं, समय भी आवश्यक है, और वो भी अनुकूल समय होना चाहिए। अगर प्रतिकूल समय धुआंधार वर्षा हो रही है, कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं इसमें मैं वास्तु का निर्माण करूंगा, तो नहीं है, उसको रुकना पड़ेगा धुआंधार वर्षा को रोकने के लिए। तो मतलब उसको समय अनुकूल समय की आवश्यकता है, उसको भौतिक पदार्थ की भी आवश्यकता है, और निर्माणकर्ता की आवश्यकता। कोई भी निर्मित संसार में इन तीन कारणों से ही होती है, समय, भौतिक पदार्थ था, सृष्टिकर्ता। कुछ भी चीज आप लीजिए, अगर किसी, तो इस समय का ऐसा प्रभाव है कि समय के प्रभाव से ही इस संसार में निर्मिति होती है, और समय के प्रभाव से ही इस संसार में सब चीज लय या विनष्ट हो जाता है। बड़े बड़े साम्राज्य निर्माण हुए समय के प्रभाव से, बड़े बड़े साम्राज्य निर्माण हुए, और उनको लगा कि ये साम्राज्य हमारा अभी अनंत काल तक चलेगा, लेकिन समय के प्रभाव से बड़े बड़े साम्राज्य निकल गए, है ना। मुगल साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, और कितने कितने साम्राज्य आए और निकल गए। कोई भी साम्राज्य टिका नहीं है, क्योंकि समय का प्रभाव ऐसा है। तो यहां पर ये सब चीज निर्माण करने के लिए सब कुछ आवश्यकता लगती है। हम देखते हैं उदाहरण आता है कि समुद्र के अंदर अगणित लहरों का निर्माण होता है, हमें हर सेकंड में अगणित लहरों का निर्माण होता है। क्या समुद्र इसका निर्माण करता है? क्या समुद्र के अंदर इसकी फैक्ट्री है लहरों के निर्माण करने की? नहीं। तो क्या समुद्र का पानी इन लहरों को निर्माण करता है? उसका उत्तर नहीं है। तो फिर लहरों को कौन निर्माण करता है? तो अंतिम यही उत्तर आएगा, समुद्र के लहरों को भगवान निर्माण करते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि समुद्र मंथन की लीला में जब भगवान समुद्र के अंदर कच्छप रूप में गए, तो कच्छप रूप में वो जो श्वास श्वास निश्वास ले रहे हैं, कहते हैं कि उसके द्वारा समुद्र का लहर का निर्माण हुआ, अभी तक चल रहा है ना। और यह भी कहा जाता है कि समुद्र के ऊपर जो वायु बहती है बड़ी तेजी से, जो समुद्र के ऊपर जो वायु बहती है वो समुद्र का लहरों का निर्माण करती है ना। और वायु हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। मत भयाद वाति वातो हम, सूर्य स्तप्ति मत भयाद, वर्षति इंद्र दहति अग्नि। भगवान बोलते हैं कि वायु का वहन मेरे वजह से हो रहा है, इसलिए कभी वायु को रोका नहीं जा सकता है। और क्योंकि वायु रुकती नहीं है, इसलिए समुद्र का जो लहर है वो चलती रहती है। तो लेकिन वायु किसको दिखती नहीं, वायु किसको दिखती नहीं है, लेकिन बहती रहती है। तो वैसे ही भगवान इस जगत के अदृश्य कारण है, सारे कारणों के कारण भगवान है, लेकिन बहुत सारे बद्ध जीव उनको देख नहीं पाते। हर चीज के कारण भगवान है लेकिन देख नहीं पाते, इसलिए अदृश्य रूप से भगवान कार्य कर। जो बुद्धिमान है वो देखते हैं कि सब कारणों के कारण भगवान है, लेकिन जो बुद्धिहीन है वो समझ नहीं पाता। इसलिए बुद्धिहीन लोग बोलते हैं अरे नहीं, इस जगत में तो प्रकृति कार्य कर रही है ना। प्रकृति, प्रभा जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि सबों के स्रोत कृष्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण के कोई स्रोत नहीं है, और भगवान समस्त कारणों के कारण है। यद्यपि भगवान समस्त कारणों के कारण है, तो भी वे परम दिव्य है और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय है, यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। तो प्रत्येक प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गलस्तन को दूध का कारण मानना। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकटस्थ कारण है, किंतु मूल कारण तो भगवान कृष्ण है। तो प्रभा जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि इस जगत का मूल कारण कृष्ण है। हालांकि हम देखते हैं कि सारा कुछ निर्माण प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति से हम पदार्थ ले रहे हैं, प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबका कारण प्रकृति को मानना गलत है। क्योंकि प्रकृति किनके कार्य किनके अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान बता दे गीता में कि मई अध्यक्षण प्रकृति सुयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। अगर प्रकृति से भगवान प्रकृति को भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं होगा तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति स्त्री है ना, लेकिन उसको आंदोलित करने वाले भगवान है। जब तक स्त्री पुरुष के संपर्क में नहीं आती बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसे ही जब तक प्रकृति को भगवान की सहायता प्राप्त नहीं होती है प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें यह सोचना है कि प्रकृति का भी निर्माण भगवान ने किया और प्रकृति भी भगवान के आदेश कार्य करती है, और भगवान आदेश नहीं देंगे तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो काल काल की भगवान का इस रूप है। भगवान गीता में कालोस्मि लोकक्षय कृत है ना, तो काल भगवान का रूप है। इस संसार में काल भगवान के ही प्रतिनिधि है। तो ये और जो भौतिक पदार्थ है उसका भी निर्माण भगवान ही करते हैं, और सृष्टि करता भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि सर्व कारण कारण भगवान ही सब चीज के कारण है, और भगवान को नहीं समझना और निकटस्थ कारण को ही सब कुछ मान लेना ये मूर्खता है। और फिर प्रभा जी लिखते हैं कि भगवान हमारे सबसे निकट है, ना हमारे माता पिता भाई बंधु कोई हमारे जितने निकट नहीं है उतने भगवान हमारे निकट है, हमारे हृदय में ही है ना। हम जीवात्मा और भगवान परमात्मा, जीव और परमात्मा हृदय के अंतर्गत क्षेत्र में है, बहुत ही निकट है। लेकिन जब जीव भगवान को भूल जाता है और इस संसार के चीजों को देखता है ना, निकटस्थ तो भगवान को छोड़कर संसार की चीजों को देखता है, संसार की चीजों में आनंद लेना चाहता है, तो फिर उसको भगवान बहुत दूर दिखते हैं, अरे भगवान बहुत दूर है। लेकिन वही जब भक्ति में आकर या भक्तों भगवान के भक्तों के संपर्क में आकर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको लगता है अरे भगवान तो बहुत निकट है मेरे, एकदम निकट है, इतने निकट है कि कोई मेरा निकट नहीं है। इस संसार में सब लोग हमारा त्याग कर देंगे। अगर बच्चा गुंडा बन जाता है तो माता पिता बोलते इसको पुलिस को बोलते इसको लेके जाओ, है ना, छोड़ देते उसको, और बोलते इसको लेके जाओ हमको मत लेके जाओ, है ना। माता अपने बच्चों से कितना भी प्रेम करे लेकिन वो अपने बच्चों के साथ जेल में नहीं जाती है। लेकिन भगवान इतने महान है कि देखते हैं कि मेरे बच्चे थोड़े दुष्ट हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा अलग भौतिक जगत में रखते हैं, लेकिन भौतिक जगत में रखते हुए उनके साथ जाते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा जीव के साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव को जानता नहीं, अज्ञान में है वो, है ना, उसको कोई जानता नहीं है, उसको क्या खाना है क्या करना है क्या, उसको कोई जानता नहीं है। इसलिए भगवान हमेशा जीव के साथ रहते हैं, और जिस जिस योनि में जीव जाता है उस योनि में क्या क्या करना है भगवान उसको ज्ञान देते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अगर भगवान जीव के साथ नहीं रहेंगे तो जीव कुछ नहीं कर सकता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता क्या करना है। तो भगवान की ऐसी महानता है कि हमेशा जीव के साथ रहते हैं। अगर दुष्टतावश जीव विष्ठा का कीड़ा भी बन जाता है तो वो विष्ठा के कीड़ा के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। ये भगवान की विशेषता है, महानता है, नहीं क्या है, क्योंकि भगवान को भौतिक पदार्थ स्पर्श नहीं करता है। भगवान, हालांकि सारे भौतिक पदार्थ भगवान से निर्मित है, लेकिन भौतिक पदार्थ भगवान को प्रभावित नहीं करते, ये भगवान की विशिष्टता है। और हम देखते हैं कि गजेंद्र भी भगवान को प्रार्थना कर रहा है एक सुंदर श्लोकों से, बोल रहा है नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागम आमनाय महार महार्णनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परानयाय। कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय, ये भगवान आप सब अखिल जगत के कारण है, और निष्कारणाय कारण रहित भी है, अद्भुत कारणाय हर वस्तु के अद्भुत कारण भी आती है। तो ये गजेंद्र भगवान की तुलना मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, तात्पर्य प्रभु जी लिख रहे हैं कि भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात में अद्भुत है कि उनसे असंख्य वस्तुएं निर्माण होने पर भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एवा अवशिष्यते। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में $10,00,000 हो तो हम जो जो धन निकालते जाते हैं त्यो बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण है कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाते हैं तो भी वही भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एवाशते। इसलिए भगवान अद्भुत कारण है। और एक दूसरा उदाहरण भी प्रभु जी यहां पर देते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहा है फिर भी उसकी वही शक्ति बनी रहती है, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर उन परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में कहा गया जाए, उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है फिर भी वे मूल स्वरूप है। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे हर वस्तु उद्भूत होती है, हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है तो भी वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं है। तो यह है भगवान। भगवान अखिल कारणाय है और अद्भुत कारणाय है। हम देखते हैं संसार में जितने भी अद्भुत वस्तुएं हैं, जितना हम कितना सारा अद्भुत वस्तु हम इस संसार में देखते हैं, कई चीजें हमारे समझ के परे भी होती है, लेकिन फिर सबों के कारण भगवान ही है। और नारद मुनि यहाँ पर बोल रहे कि ठीक है, यहाँ पर भले ही तीन कारण बता रहे नारद मुनि प्रचेताओं को, लेकिन बोल रहे कि लेकिन वास्तविक एक ही कारण है, सब चीजों के कारण एक ही है और भगवान है, इसलिए तुम्हें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो कई बार हमें विश्वास नहीं होने के कारण कृष्ण ही सबके कारण है और कृष्ण की सेवा करने से सारे कर्म हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी को, क्या तुमने, तुम भाग गए है ना, तुम संसार के दुखों से भाग गए और तुम हमेशा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हो, कृष्ण की सेवा करते हो, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। और जब हम बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग पूछते हैं कि आप कौन है, हम बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे इंजीनियर है, अरे तुमने एक सीट खराब कर दिया देश का, है ना। लेकिन वो जानते नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, अज्ञान है, समझ नहीं पाते, वो दूरस्थ कारण भगवान है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि बचपन से शिक्षा नहीं मिली है, बचपन से शिक्षा नहीं मिली है कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारे कार्य हो जाते हैं, असली अज्ञान में कहते हैं। और उसमें कोई भगवान व्यक्ति मिल जाता है, सोचता है कि ठीक है इतना इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, ये भगवान की सेवा में लग गया है, तो चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूं। अगर वो ट्राई करता है, प्रयास करता है, तो उसको भी उसका अनुभव आ जाता है कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ हो जाता है। विश्वास, भक्ति, भक्ति का अर्थ है विश्वास, है ना। अधोश्रद्धा श्रद्धा की शुरुआत है ना, और प्रेम मतलब शत प्रतिशत श्रद्धा मतलब प्रेम, और अधोश्रद्धा मतलब उस प्रेम की शुरुआत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये अज्ञानी जीवों का अज्ञान दूर करने के लिए उनको कृष्ण का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि संसार में इतने सेंटर्स और इतने केंद्र, एक घर में केंद्र या जहां पर जहां जहां आवश्यकता मिलते वहां पर केंद्र निर्माण होनी चाहिए, ताकि इस अज्ञानी जीव को कृष्ण के बारे में श्रवण करने का मौका मिला। जैसे ही जीव को पर्याप्त मात्रा में कृष्ण के बारे में श्रवण करने का मौका मिलेगा, तो उसका अज्ञान दूर होते जाएगा और वो समझ जाएगा कि कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ हो जाएगा। ये बड़ा अज्ञान है कि कृष्ण की सेवा करने से क्या मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है ठीक है मैं सुबह कृष्ण की थोड़ी सेवा कर लूंगा और फिर शाम के समय, रात में समय कृष्ण की सेवा करूंगा और दिन में मैं स्वतंत्र हूं अपनी सेवा करने के लिए। ये भी अज्ञान है, क्योंकि स्वरूप कहा गया है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमें सुबह उठने से ही भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, फिर दिन भर कृष्ण की सेवा करके थक जाना चाहिए, रात पर सो जाना चाहिए। प्रभु जी बोले अगर दिन भर कृष्ण की सेवा करने से रात को आपको कृष्ण का ही स्मरण आएगा, है ना। तो और कृष्ण की सेवा में आनंद है। तो हम देखते हैं कि मंदिर में कुछ भी सेवा करते समय हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कुछ भी कंपनी में नहीं सुन सकते। कोई व्यक्ति बोलेगा हम लोग तो बाहर काम करते हैं, लेकिन बाहर जो हम कार्य करते हैं उस समय श्रवण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रगत है तो वहां पर भी वो कृष्ण का स्मरण कर सकता है कि ये कार्य मैं भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, ये कार्य मैं गुरु महाराज की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, और इस कार्य से जो मुझे फल मिलेगा ये मुझे अंतिमतः भगवान कृष्ण को ही अर्पण करना है। इस भावना में अगर कोई कार्य करता है तो वो कृष्ण भावना भावित कार्य है, और कृष्ण भावना भावित कार्य करना ही जीव का स्वभाव है, क्योंकि जीव भगवान का 2400 घंटा सेवक है। ऐसा नहीं कि बस एक सेकंड करो तो मैं, जैसे हम कृष्ण को भूलने का प्रयास करते हैं माया पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, है ना। तो हमें कृष्ण का निरंतर स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कृष्ण का स्मरण विस्मरण हो जाता है तुरंत माया पकड़ लीजिए। मतलब क्या, माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, है ना। इस संसार में दो ही चीजें हैं, या तो कृष्ण का स्मरण या कृष्ण का विस्मरण, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया है स्मर्तव्यम सततम विष्णु न स्मर्तव्यम जातुचित सर्वे विधि निषेधाश्च एत एव किंकर। तो शास्त्र का उपदेश है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमें सतत भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहना, कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। और शास्त्र में जितने भी विधि या निषेध जो दिए हैं ये सब भगवान कृष्ण के ही सेवक हैं। शास्त्र में जितना बोला गया ये मत करो, क्यों, ये नहीं करने से कृष्ण का स्मरण होगा, ये करो क्योंकि ये करने से कृष्ण का स्मरण होगा, है ना। तो सारा शास्त्र यही हमको बताता है कि एन केन प्रकारेन मन कृष्ण निवेशयात, कि कैसे भी करो कुछ भी करो लेकिन आपका मन भगवान कृष्ण में कैसा लगा रहे उसके लिए हमें करना चाहिए। शरणागति का अर्थ ही है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान का स्मरण करने के लिए जो चीज अनुकूल है वो अपने जीवन में अपनाओ, और भगवान कृष्ण का स्मरण करने में जो चीज विपरीत प्रतिकूल है उसका त्याग करो। तो शास्त्र हमें यही बताता है कि कृष्ण की सेवा में लगे रहो, तो कृष्ण की सेवा में लगे रहने से हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। इसका अनुभव हम कृष्ण भावना में आने से और कृष्ण भावना भावित कार्य करने से हमें प्राप्त हो जाता है। प्रभु जी बोलते थे उस समय हमारे 110 सेंटर्स है और हर सेंटर में कम से कम 200 लोग है, तो 20,000 लोग हमारे साथ है और हम कोई काम नहीं करते, कोई फैक्ट्री में जाते नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, हमारा एक ही कार्य है कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण के लिए सुबह से लेकर शाम रात तक कृष्ण की सेवा में लगे रहना, ये हमारा कार्य है। और कृष्ण अरेंज कर रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे थे कि ये मत सोचो कि हमारी शाखा केवल भारत में है जहां पर लोग कृष्ण को मानते हैं तो धन दे देते हैं। पाश्चात्य देश में जहां पर लोग कृष्ण को जानते भी नहीं है, प्राय लोग जानते नहीं है, वहां पर भी हमारे सैकड़ों सेंटर्स है और वहां पर भी हमारा कार्य हो रहा है, ये हमने प्रकट करके दिखाया। आपको लगता है अगर आपको इसमें अगर डाउट है तो आप जाके देखिए कि कैसे पाश्चात्य देश में और हर जगह, मतलब अमेरिका खंड हो, आशिया खंड हो, अफ्रीका खंड हो, यूरोप खंड हो, ऑस्ट्रेलिया, सारे खंडों में हमारी शाखाएं हैं और वहां पर भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। ये हमने मतलब प्रूव करके दिखाया है कि कृष्ण की सेवा करने सब कुछ हो जाता है और सब तरह के लोग, दुनिया के सब तरह के लोग हमारे आंदोलन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। ये प्रभु जी बोल रहे थे। देखो मैं 70 साल की उम्र में मैंने आंदोलन चालू किया है, अभी मैं 75, 78, 80 साल का हूं, फिर भी आंदोलन चल रहा है ना। तो प्रभु जी ने मतलब लोगों को एक प्रूव करके दिखाया कि कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ हो जाता है, आपको माया की सेवा करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी हमेशा बोलते थे कि मैं सारे संसार को आमंत्रित करता हूं कि हमारे संस्था में आइए, आप 16 माला जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए और हमारे संस्था में जो भी नियम है उनको पालन करिए, कृष्ण की सेवा करिए, हम आप सबको खिलाएंगे, कोई संसार में भूखी नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, जो भी भूखा है हमारी संस्था में आइए। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के पहले, इस्कॉन संस्था का निर्माण करने के पहले भी प्रभुपाद जी ने अपना समाचार पत्रों में विज्ञापन देते थे कि मेरे पास आइए, है ना, आपको अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है आपको खाने के लिए, मेरे पास आइए, मैं आपको व्यवस्था करूंगा, है ना। वो प्रभुपाद जानते थे अरे 80 लाख योनि क्या कर रहे हैं संसार में, कौन सा जॉब कर रहे हैं, कौन से नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनको खिला रहे, सबको भगवान खिला रहे हैं, है ना। कहते हैं ना अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, है ना। और क्या बोलते हैं कि दास मनु के कहे गए सबके दाता राम। और अजगर एक जगह पर रहता है उसके भी मुंह में भगवान डालते हैं, लाखों प्रकार के पंछी है क्या काम करते हैं लेकिन भगवान उनको भी खिलाते हैं और सबको भगवान खिला रहे हैं। ऐसा नहीं, राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि जिसने मुंह चीरा है, जिसने मुंह चीरा है वो मुंह में डालने की भी योजना रखता है। तो अगर जो बच्चा अभी भी जन्मा है, बस एक एक सेकंड हो गया उसको जन्म लेके, उसका भी भोजन का व्यवस्था भगवान ने कर लिया है। तो प्रभु जी बोलते थे कि ये भोजन की चिंता करना ये सही धर्म नहीं है। प्रभु जी ये कृष्ण लोग बहुत डांटते थे, बोलते हमेशा भगवान के पास जाके बोलते कि मुझे रोटी दो, है ना। अरे भगवान से रोटी क्यों मांगते हो, भगवान को रोटी दो, भगवान को प्रेम से खिलाओ, है ना। इस संसार ने भगवान ने इतना सारा निर्माण कर रखा है, वो लेकर प्रेम और भक्ति से भगवान को अर्पण करो, भगवान को मांगो मत। तो प्रभु जी हमेशा बोलते थे कि भगवान को अगर मांगना है तो हे भगवान अनंत काल से मैंने आपसे शुद्ध भक्ति नहीं मांगा, अनंत काल से मैंने आपको रोटी कपड़ा मकान ही मांगा है, इसलिए मुझे रोटी कपड़ा मकान मिला है, अभी मुझे पता चला है क्योंकि शुद्ध भक्त के मैं संपर्क में आया हूं और अभी मुझे पता चला है कि आपसे क्या करना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश का मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वे। हे भगवान मुझे ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना धन चाहिए, ना मुझे अनुयायी चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में शुद्ध भक्ति चाहिए। अनंत काल से मैं तड़प रहा हूं, अभी मैं आपके सामने आया हूं कि मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए। और ये शुद्ध भक्ति ही जीव को सही आनंद प्रदान करने वाली है। जैसे हम शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं हमें आनंद, सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये अहेतु की अप्रतिहता जो भक्ति है, यही आत्मा को आनंद प्रदान करने वाली है, यही आत्मा को सुख प्रदान करने वाली है। और श्रील प्रभुपाद जी सारे संसार में इसी ही शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले शुद्ध भक्ति कठिन होती है, लेकिन हमको बहुत सारे स्टार्स मतलब तारे नहीं चाहिए, हमें हमें चंद्र चाहिए, वी वॉन्ट मून, है ना, वी डोंट वॉन्ट स्टार्स। तो हमें तो चंद्र चाहिए, क्योंकि भगवान का भी नाम चंद्र है, राधा वृंदावन चंद्र, राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, हरिश्चंद्र। तो भगवान की भी तुलना कई बार चंद्र से की जाती है। तो भगवान बोलते हैं कि इस संसार में हमें शुद्ध भक्ति करने वाले ऐसे चंद्र चाहिए, है ना, हमें तारे नहीं चाहिए। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी की संस्था में है और बड़े सुरक्षित है। प्रभुपाद जी ने ऐसा है ना निर्माण किया है कि इतना शुद्ध सात्विक जीवन शैली दिया है ना। लोग बोलते कि अभी कई सारे लोग सुबह उठ रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हमें पहले से ही ये विधि दिया है कि सुबह उठो और उठते ही स्नान करो और भगवान का दर्शन करो, भगवान के लिए नृत्य करो और थक जाने का भगवान का प्रसाद लो। इतना करने से कोई जीव जंतु आपके पास आने वाला नहीं है। मैंने देखा जब से ज्वाइन किया तब से कितने प्रकार के वायरसेस आए, लेकिन कभी भय नहीं आया। अरे इतने वायरस आए, इतने सारे चले गए, खाली इतना नहीं होता था कि वायरस ने इतने लोगों का मृत्यु किया, उतना लोगों का मृत्यु किया। तो और दूसरा बात है कि जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको ज्यादा डर लगता भी नहीं है, उसको लगता है ऐसे तो मैं आत्मा हूं, ये भौतिक शरीर मुझे दिया गया है, कुछ कारण हमें तो भौतिक शरीर को संरक्षण करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। और कुछ कारण भगवान अगर इस शरीर को ले लेंगे, या तो भगवान के धाम अपने धाम लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसा दूसरा शरीर दे देंगे जहां पर हम भक्तों के संगत में आएंगे। इसलिए भगवान के भक्तों को डर लगता नहीं है, सारा संसार डर में है कि मेरी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु होगी। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो कलकत्ता के ऊपर बमबारी हो रही थी, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में लगकर आनंद में मैं कचूरिया तल रहा था, कचूरिया अच्छी लगती थी। तो असली निर्भय अगर बनना है तो हमारे हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और इस संसार में भगवान की भक्ति करने का सरल तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की जय।
चंद्र की।